हम सबके बीच में हमारे आदरणीय राजयोगिनी शशि दीदी जी पधार चुके हैं। हम एक हाथ हिलाते हुए दीदी का स्वागत करते हैं, सत्कार करते हैं, अभिनंदन करते हैं। दीदी हमारे यज्ञ के ज्वाइंट एडमिनिस्ट्रेटिव हेड हैं, इसलिए कंधों पर बहुत जिम्मेवारियां तो है ही, लेकिन फिर भी इजी और बिजी का मंत्र बहुत अच्छा पक्का किया हुआ है और हर ग्रुप के साथ आके मिलते हैं, अपना अमूल्य समय निकालकर और जो दादियों से बाबा मम्मा से पालना ली है उसकी भासना सबको जरूर देते हैं। तो आज हम दीदी से वो भासना भी अनुभव करेंगे और भट्टी की सफलता के लिए शुभकामनाएं भी प्राप्त करेंगे और फिर बाबा के घर से स्वागत टोली भी प्राप्त करेंगे दीदी के हस्तों से। तो सुनते हैं दीदी को।
ओम शांति। मधुबन तपस्वी भूमि, प्यारे प्यारे बाबा की श्रेष्ठ चरित्र भूमि, आदरणीय दादियाँ की एडवांस पार्टी की विशेष तपस्वी भूमि, जिसमें दिल्ली पालम विहार, बसंत कुंज और उससे संबंधित सेवा केंद्र के भाई बहनों का, बाप दादा मधुबन निवासी सब भाई बहनों की तरफ से आपका मधुबन में बहुत बहुत स्वागत है। गीत में तो आपने सुन ही लिया कि मधुबन वाले आपका स्वागत करते हैं और बाप दादा आपको कितनी मालाएं पहनाते हैं, सफलता की माला, और भी कितनी मालाएं होंगी जब हम गिनती करने बैठेंगे तो वो तो गिनती नहीं हो सकेगी, इतनी मालाओं से भरपूर करते हैं। तो जब कहा कि हमें दिल्ली पालम विहार और दिल्ली बसंत कुंज के भाई बहने यहाँ भट्टी करने के लिए आ रहे हैं तो हमें थोड़ा सा सोच चला कि ये यहाँ पर भट्टी कैसे करेंगे। क्यों? क्योंकि दिल्ली राजधानी में रहते हैं, वहाँ पर बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर हैं, आराम से रहते हैं, एसी रूम मिलते हैं, बहुत सुविधाएं होती हैं, ओआरसी में चले जाओ सुविधाओं से भरपूर हैं, बाबा का घर तो बहुत सिंपल है। तो हमें तो नहीं विश्वास हो रहा था कि आप यहाँ इतना कंफर्टेबल फील करेंगे। आप बाबा को क्या बताएं, खुश हैं या नहीं हैं, या आपको अच्छा लगा है या नहीं अच्छा लगा है, पहले बताओ। खुश हैं, हाँ जी बोलने का है ना, हाँ। कंफर्टेबल हैं, अच्छा। कमरों में खुश हैं, कमरों में तो एसी है ही नहीं, हाँ जी वो भी, हाँ जी कमरों में भी एसी नहीं है वो भी अच्छा है, अच्छा कमरों में एसी नहीं है, गर्मी बहुत है, कैसे रहेंगे अपने कमरों में, पहले बताओ कैसे रहेंगे अपने कमरों में, नहीं है गर्मी, अरे बाबा की गोदी में बैठ जाओ शीतलता है। कमरा क्या, बाप की गोदी मिले, बाप के घर में एक कदम रखने का चांस मिले, इससे बढ़कर के और भाग्य क्या हो सकता है। और वैसे भी दिल्ली ऐसा स्थान है जिसको प्यारे साकार बाबा भी याद करते आए और दिल्ली की भी महिमा करते हैं, और दिल्ली तो भविष्य में हमारी राजधानी होगी, उनकी नज़ारों को जब देखते हैं, सोचते हैं, अनुभव करते हैं तो ये छोटी छोटी बातें हमारी बुद्धि से बिल्कुल दूर हो जाती हैं। ऐसा लगता है कि सड़पंथ पर बैठे, जैसे बाबा ना मुरली में कहते हैं सड़पंथ, समझते हैं ना, कि जैसे किनारे पर, सिंधी शब्द है सड़पंथ, मीन्स जैसे कि भी आवाज लगाओ तो सामने सुन रहा है, अभी हम पहुंच रहे हैं, बोलते अरे अरे आओ आओ हम पहुंच रहे हैं। सड़पंथ मीन्स ऐसा है कि आप ऐसे स्थान पर बैठे हैं जहाँ पर भविष्य दुनिया के अनुभव पहले पहले तो आप कर रहे हैं। कैसे अनुभव किए, क्योंकि शुरू यज्ञ की स्थापना में हमारी दीदियाँ, सब वरिष्ठ दादियाँ, जगदीश भाई और गुलजार दादी जी आपके दिल्ली में ही रहे। गुलजार दादी हमारी, आपकी तो नहीं है लेकिन है तो हमारी, है ना, हमारी है ना, तो वो दिल्ली में रहे, इतनी पालना आपको दी, इतनी पालना दी, तो ऐसे जो रतन दिल्ली में रहे हैं तो कितने भाग्यशाली हुए, हुए ना भाग्यशाली। फिर बाबा कहते दिल्ली पालम वाले, पालम वाले तो वैसे ही एयरपोर्ट के पास बैठे, हर रोज जो प्लेन उड़ता उसको देखते रहते, ऐसा है ना। तो बाबा ने क्या कहा है कि कौन से प्लेन उड़ाने हैं संगम युग के अंदर, संगम युग के अंदर हमारा है खुशियों के नज़ारे, और खुशियों के नज़ारे तभी होते हैं जब हमारे जीवन के अंदर उमंग और उत्साह है। तो बाबा कहते खुशियों के झूलों में झूलते रहो और ऐसे ऐसे फरिश्ते बन करके सारे विश्व के अंदर भ्रमण करो। सतयुग के अंदर तो आप सबको हर एक को पुष्पक विमान होगा, यहाँ तो हर घर में एक, घर में एक गाड़ी होती है, वो भी चार पांच शेयर करते हैं। सतयुग में दो लोग तो दो पुष्पक विमान, बड़ा पुष्पक विमान, छोटा पुष्पक विमान, उससे छोटा पुष्पक विमान, एक पुष्पक विमान होगा जो आपके सारे महल के अंदर चक्कर लगाएगा, ठीक है ना। वहां थोड़ी ऐसे पैदल चलते रहेंगे, आपका महल कितना बड़ा होगा पता है, कितना बड़ा होगा, दिल्ली के बराबर है, बस इतना ही चाहिए क्या आपको है, इससे बड़ा नहीं चाहिए ना। दिल्ली, राजस्थान, माउंट आबू भी साथ में गिनती कर लो है, तो पूरा नॉर्थ इंडिया ले लो आप है, इतना बड़ा होगा। और वहां पर जब आप अपने महलों में जाएंगे तो क्या करेंगे, माताएं थक जाएंगी ना, आप तो अच्छा लगेगा है, थक गई अभी से सुनते है ना, देखो ना सुख गई। अरे आपको कुछ नहीं करना है, एक छोटा सा पुष्पक विमान होगा, दो सीटर होगा, एक सीटर होगा, उसमें बैठे बटन दबाए पूरे महल के अंदर चक्कर लगा के आ, और दूसरा महल होगा जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे, दूसरा पुष्पक विमान होगा एक स्थान से थोड़ा दूसरे स्थान पे जाने के लिए, और तीसरा पुष्पक विमान होगा जो पूरे ही भारत के अंदर, उसमें तो भारत एक ही होगा ना, अपना ही राज्य होगा, उसके अंदर चक्कर लगाने के लिए जाए। तो हर एक को कितने पुष्पक विमान होंगे, तो इसलिए पालम वाले तो सदा उसी नशे में रहते हैं कि हम तो ऐसी दुनिया में जा रहे हैं जहां सदा खुशियों में झूमते रहेंगे और श्री कृष्ण की राजधानी में होंगे, और वहां पर जाकर के हम श्री कृष्ण के आसपास होंगे। अच्छा, श्री कृष्ण के राजधानी में जाकर के आज कल परसों भी बाबा ने कहा था, सबको क्या बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है या क्या बनना है, राम सीता, क्षत्रिय में जाना है किस में, जो जो लक्ष्मी नारायण बनना चाहेंगे वो हाथ खड़ा करे, ये देखो दो चार ने हैं, लेकिन सारे बन जाएंगे तो राज्य कौन करेगा राज्य कौन करेगा, लेकिन हम लक्ष्मी नारायण की राजधानी में होंगे, जिसको बाबा ने कई बार मुरली के अंदर कहा है। देखो माला तो बननी है, और माला में भी बाबा ने क्या कहा है, कई भाई बहने बाबा को कहते थे बाबा माला तो बन गई है, बाबा कहते माला तो बन गई है लेकिन आप तैयार तो हो, बाबा माला तैयार कर देंगे, और वो माला तो अच्छी लगती है ना, बहने जो पहनती है, एक माला होती है उसके बाद दूसरी माला है, तीसरी माला है, कई प्रकार की मालाएं होती है ना, बहुत सुंदर सा वो बन जाता है, नेकलेस बन जाता है, एक होता छोटा सा एक है बड़ा। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो अपने आप को ऐसा बनाएंगे श्री कृष्ण की राजधानी में आने वाले गोप गोपियां बनकर के रहेंगे, वो माला के दाने भी बनेंगे। फिर बसंत कुंज के जो भाई बहने हैं वो तो सदा बसंत बिहार में रहते हैं, द्वारका में जाओ बड़ी बड़ा खुली जगह है, आराम से घूमते हैं, आराम से रहते हैं, वहाँ पर अपनी सरोज दीदी तो क्या नहीं पालना करती है, पालम बिहार में हमारी उर्मिल बहन कितनी आप सबकी पालना करती है, इतनी पालना मिलती है, द्वारका में तो पहले ही बिठा दिया बाबा ने, फिर जाकर के सतयुगी दुनिया द्वारका में बैठेंगे, और बसंत बिहार में तो भी बैठ गया वसंत कुंज। बाबा कहते सदा ऐसे बाहरी मौसम का अनुभव करने वाले हैं और सदा बाप के साथ का अनुभव करने वाले हैं। तो अब जब हम यहाँ भट्टी करने के लिए आए हैं, आपके सामने काफी सारी बातें आप सबको सुनाई जाएंगी और कुछ नियम भी आप सबको बताए गए हैं। लेकिन बाबा कहते हैं नियम में सबसे बड़ी बात है बाबा के साथ के स्नेह का अनुभव करना, क्योंकि अभी तक जो नए नए अभी जैसे बता रहे थे कोई ऑनलाइन क्लास कर रहा है, कोई कभी कभी क्लास करता है, कोई अलग से क्लास करते हैं, कोई कितनी क्लास करते हैं, फिर हर एक के पास एक बहुत बड़ी बात आती है, कहते बाबा को हम याद करने बैठते हैं हम बाबा को भूल जाते हैं, बाबा की याद नहीं रहती है, ऐसे कहते हैं ना बाबा को, बाबा याद कैसे करें हम बाबा को भूल जाते हैं, या फिर क्या कहेंगे चार पांच लोगों के पास जाएंगे, अच्छा आप हमें बता दो हम याद का चार्ट कैसे लिखें, तो वो एक कहेगा इतना लिखना, दूसरा कहेगा इतना लिखना, तीसरा कहेगा इतना लिखना, तो क्या करते सारा दिन काउंट करते हैं, कैसे काउंट करते हैं, आज चार से पौने पांच बजे तक मैंने योग किया था, पौने पांच से पंद्रह मिनट मैंने अलग से योग किया, मेरा एक घंटा हो गया, फिर दिन में मैंने आधा घंटा योग किया, हम बाबा के शांति स्तंभ पर बैठे पंद्रह मिनट हो गया, तो योग किया या गिनती किया है, योग किया या गिनती किया, सारा दिन गिनती करते हैं, अभी मैंने पांच मिनट किया उसको चार्ट में लिख देते हैं। बाबा के पास जब बच्चे चार्ट भेजते थे ना, बाबा के पास जैसे चार्ट आता था बाबा उठा करके रख देते थे, बाबा कहते थे ये सच्चा चार्ट नहीं, क्यों, क्योंकि उसमें स्नेह नहीं है, उसमें केवल गिनती है, उसमें केवल कंपटीशन है कि इसने इतने घंटे योग किया अभी मैं करके दिखाऊंगा, तो योग इसको थोड़ी कहते हैं, योग का अर्थ है बाप से प्यार, बाप से स्नेह, बाप से प्राप्ति, बाबा के साथ के अनुभव, खुशियों की अनुभूति, आंतरिक सुख की अनुभूति, इसको हम कहते हैं योग। अब इसमें आपको एक रियल स्टोरी सुनाती हूँ, क्योंकि आपको पता हो जब हम सभी पहले साकार बाबा से मिलते थे, फिर उसके बाद जब अव्यक्त बाबा से मिलते थे, तो मैं आप कहानी बाद में सुनाऊंगी, लेकिन अव्यक्त बाबा से मिलते थे पहले ग्रुप ग्रुप मिलते थे, जब ये ओम शांति भवन बना तो वहां पर जब मिलते थे तो ग्रुप ग्रुप मिलते थे और उसमें बाबा की मुरली छोटी होती थी और ग्रुप में आते थे तो विदेश का एक ग्रुप था उसमें एक भाई बार बार कंप्लेंट करता था मेरा योग नहीं लगता है। उसने कहा आज मैं जब बाबा से मिलूंगा तो मैं बाबा से प्रश्न पूछूंगा। ये कहानी मैंने पहले भी सुनाई, किसने सुनी है ये कहानी मेरी, नहीं, अच्छा, तो बाबा से पूछूंगा कि बाबा मेरा योग नहीं लगता है। तो जैसे वो ग्रुप बाबा के पास बैठा मिलने के लिए तो बाबा ने उसको कहा ये सदा का योगी बच्चा है। उसको देख के सारे हंसने लगे। बाबा ने कहा क्या हुआ, सबने कहा बाबा ये तो कहता मैं बाबा से पूछूंगा मेरा योग नहीं लगता, तो बाबा ने कहा क्या कहता है, यही तो कहता है बाबा मैं आपको भूल जाता हूँ, बाबा मेरा योग नहीं लगता है, आज मैं बाबा के कमरे में जाके बाबा से योग लगाऊंगा, आज मैं पावरफुल योग लगाऊंगा, बाबा मैं आपको याद कैसे करूं, सबसे ज्यादा याद तो ये कर रहा बाबा, बाबा जो कह रहा है वो कौन कह रहा है, ये बाबा बाबा ही कह रहा है, लेकिन इसका याद करने का तरीका कैसा हो गया है, जैसे आप करते क्या कहेंगे बाबा मेरे पति की बुद्धि का ताला खोल दो, बाबा मैं क्या करूं, बाबा मेरे को बहुत बंधन है, बाबा मेरा शरीर कमजोर है, बाबा मैं क्या करूं, ऐसे ऐसे आप भी बाबा को याद करते हैं, बाबा के बिना रह नहीं सकते, बाबा का घर छोड़ नहीं सकते हैं, बाबा का साथ नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन बुद्धि के अंदर जो गैप रख दिया ना, वो गैप कौन सा है, स्नेह का गैप है, अंदर प्यार भी है लेकिन प्यार को कैसे जोड़ना, तो बाबा ने कहा किस तरह से चल रहा है बच्चा, याद सबसे ज्यादा कर रहा है, जैसे आप देखो कोई व्यक्ति खेल वहां दौड़ लगाता है, जैसे रेस होती है ना मैराथन रेस, उसमें जो दौड़ने वाले होते हैं उनके लिए ट्रैक होता है, अगर कोई दूसरा व्यक्ति ट्रैक के बाहर दौड़ेगा सबसे फास्ट चला जाएगा लेकिन उसको नंबर नहीं मिलेगा, नंबर किसको मिलेगा जो ट्रैक में दौड़ेगा। इसी प्रकार से बाबा ने कहा ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं और ब्राह्मण जीवन में बाबा कहते ये मेरे बच्चे हैं, कैसे भी हैं, अच्छे हैं, बड़े हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, पढ़े लिखे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, बच्चा है, कैसा भी है, दुनिया की भेंट में कैसा है, बाबा ने कहा ये मेरा ही है। और हम क्या कहते हैं, बाबा मेरा है। जब बाबा मेरा है तो बाबा को भी तो हम प्यार से याद करें ना, और ब्राह्मण जीवन की मर्यादाओं का पालन करें। तो ये तब जा करके हो सकता है जब हमारे अंदर वो लगन है, बाप से प्यार है। फिर कभी नहीं कहेंगे बाबा मैं क्या करूं, मैं आपको भूल जाता हूं, बाबा मैं क्या करूं, मेरा योग नहीं लगता। अरे योग तो लगा ही रहे हो ना, बाबा को याद तो कर ही रहे हो। दूसरी बात हम आपको बताएं, यहाँ जो आप भट्ठी कर रहे हैं, जहाँ आप सेंटर पर भट्ठी करते हैं, उस भट्ठी और यहाँ की भट्ठी में एक विशेष अंतर है। क्यों? बाबा के टाइम पर ये पांडव भवन बहुत साधारण छोटा सा था, इतना सिंपल था, कमरे भी ऐसे बड़े बड़े होते थे, सबके सब पट पर सोते थे। तो बाबा कहते थे ये सब मेरे पट राजा और पट रानियां हैं। तो अभी आपको क्या कहे हैं? बाबा कहते थे पट राजा और पट रानी, तो आपको क्या कहे बोलो हैं? नहीं बोलेंगे, बोलो ना, हम दिल तक तो नशीन बच्चे, कट राजा थोड़ी बोलेंगे हैं? ये कहेंगे ना, हम बाप के दिल तख्त पर विराजमान हैं। तो बाबा के टाइम पर क्या होता था, एक ही कमरे में आठ आठ दस दस इकट्ठे ही सो जाते थे, बाबा चक्कर लगाते थे। और गर्मियों के टाइम पर मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम बाबा के टाइम पर भी यहाँ रहे हैं, बाबा के अव्यक्त होने के बाद भी रहे हैं, गर्मियों के टाइम पर यहाँ पर दिन के समय इतनी ठंडी होती थी, हम हल्की रजाई ओढ़ते थे। गर्मी के टाइम पर बाबा के अव्यक्त होने के बाद ही हम यहाँ रहने लगे, तो हम यहाँ ना कोई पंखा होता था, ना कुछ होता था, कुछ नहीं होता था, ठंडी होती थी। तो उस समय तो हम लोग इस प्रकार से रहते थे। अभी एनवायरनमेंट चेंज हो गया, तो अभी पंखा भी चाहिए, एसी भी चाहिए। लेकिन बाबा का घर ऐसा है, चारों तरफ आपको एसी मिलेंगे, ज्ञानसों में जाएंगे और स्थानों पर जाएंगे, खुले खुले कमरे मिलेंगे, बाबा के घर में किसी भी कमरे में एसी नहीं है। दादियों के एक दो कमरे में लगाया, दादियां तो वैसे ही नीचे रहती हैं। यहाँ पर किसी भी कमरे, किसी भी बिल्डिंग में एसी नहीं है, कोई एक आध होगा तो कोई यूज भी नहीं करता। तो एक तो ये बात, दूसरा बाबा के टाइम पर बाबा ने कर्ण कर्ण को अपनी पावरफुल शक्ति से इतना सुंदर बनाया, इतना पावरफुल बनाया है। हम आपको बताते हैं कि कई बार कई लोग आते, एक बार की बात है, एक भाई आया किसी से मिलने के लिए, तो आया तो बाहर बैठा था आंगन में, तो जैसे आते तो हम ही पहले मिलते, मैं उससे मिली, किससे मिलना बोला, किसी बहन का नाम लिया, तो हमने उसको बोला रिसेप्शन में बैठ जाओ। कहता मैं बिल्कुल नहीं बैठूंगा रिसेप्शन में। मैंने कहा क्यों? कहता है जो शांति की वेव्स मेरे को टच कर रही है, जो अनुभव कर रहे हैं, वो मिलना तो बहन का बहाना था, मैं तो मिलूंगा नहीं अभी, पहले मेरे को जो अनुभव हो रहा है वो अनुभव करने दो। अरे ना उसको ज्ञान है, ना ब्रह्मा कुमारी इंस्टीट्यूशन का मालूम है, आंगन में थल्ले पर बैठा, उस समय कच्चा थल्ला था, बैठा है और बोल रहा है। तो अभी आप देखो कि आपको ऐसे स्थान पर रहने का मौका मिल रहा है, और चारों धाम की यात्रा करने का मौका मिल रहा है, किसी और को तो मिलता नहीं। एक बार एक महात्मा जी आए, गाड़ी से उतरे तो खड़े हो गए, आगे बढ़े ही नहीं, आगे बढ़े ही नहीं। अरे भाई आप चलो महात्मा जी आगे चलो। कहता है बाबा ने यहाँ पर तो ऐसे सागर के अंदर, ऐसे गागर के अंदर सागर समा दिया, इतने अनुभव, इतने आंगन में खड़ा ही रहा कुछ थे। कहता है कमाल है बाबा की। अब बाबा की कमाल है, इतने अनुभव बाहर वाले कर जाते हैं, और हम सब रहने वाले इतना अच्छा मौका मिलता है ये सब अनुभव करने का। लेकिन इन अनुभवों में एक आदत पड़ी हुई ना, पुराने से मिलते हैं, अच्छा फलाना तुम क्या कर रहा है, इसका क्या है। भट्ठी के टाइम किससे भी कोई भी कारोबार की लेन देन नहीं करने की, कोई भी अन्य लेन देन में ना रहे, इस बात का ध्यान रखना है। और दूसरी बात, जिस हॉल में आप भट्ठी कर रहे हैं, इस हॉल की विशेषता को जानते हैं आप? जानते हो नहीं? ये हॉल जो है ये साकार बाबा के टाइम पर ये पहाड़ी थे, ये हॉल नहीं था। बाबा का एक फोटो आपने देखा होगा, बाबा ऐसे योग कर रहे पहाड़ी पर बैठे, वो इसी पहाड़ी पर है। तो बाबा इस पहाड़ी पर बैठते थे और गीत बजता था। कभी कभी बाबा कहते थे बच्चे सब आ जाओ, गीत बजता था, धरती को आकाश पुकारे, तो सब दादियां और सब दौड़ दौड़ करके ऊपर आ जाते थे। बाबा कहते थे सेमिनार करो, सेमिनार मीन्स योग तपस्या करो। तो यहाँ बाबा मम्मा और दादियों ने इस पहाड़ी पर बैठ के तपस्या की है। तो ये पहाड़ी नहीं है, ये हॉल भी है पहाड़ी भी है। तो ये बाबा की विशेष तपस्वी पहाड़ी है। फिर जब बाबा के अव्यक्त हुए तो बाबा के बच्चे बढ़ने लगे, तो पहले अव्यक्त बाप दादा बाबा के कमरे में आते थे, फिर उसके बाद बाबा हिस्ट्री हॉल में आने लगे, फिर एक बार बहुत से भाई बहने आ गए थे। तो बाबा की स्टेज जो है ना, ये आंगन में जो बाबा का बाहर कमरा नहीं, जो बाबा के इधर दादी का कमरा, वहां पर स्टेज बनाई थी। उस समय क्या बहुत से भाई बहने थे, तो दो टाइम भोजन रखा था, सुबह 10 बजे नाश्ता और दोपहर का भोजन होता था, शाम को 5 से लेकर 6:15 तक रात का और दिन का सब भोजन होता था, और फिर वहीं पर ही बाबा आते थे। तो बाबा जब आते थे तो सब चारों तरफ भाई बहने इधर पहाड़ी पर कोई कहाँ बैठे, तो बाबा ने तो कह दिया था कि बहुत बच्चे आएंगे। तो फिर प्लान किया गया, तो 1975 में ये हॉल बन के तैयार हुआ है, पहाड़ी को तोड़ करके ये हॉल तैयार हुआ। फिर अव्यक्त बाप दादा आते थे, यहाँ बैठते थे, और हम सब बाबा के पास यहाँ बैठते थे, यहाँ बाबा और हम यहाँ बैठे सारे। तो ये जो हॉल है आपके पास डबल पावर वाला है, एक तो साकार बाबा की तपस्वी पहाड़ी, दूसरा अव्यक्त बाप दादा की वरदानी हॉल है। अब इस बात में ध्यान रखना है, अभी मैं आपको बताऊं, बाबा को एक बात बिल्कुल अच्छी नहीं लगती थी कि बाबा के सामने बैठा हो कोई उबासी दे। बाबा कहते देखो 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 माया आ गया रही है। अब ये 3 दिन भट्टी में ध्यान रखना, किसी ने उबासी दिया ना, बाबा ऊपर से देख लेंगे, आप पानी पी के बैठो, गर्म पानी पी के बैठो, उबासी आती है तो 1 सेकंड बाहर चले जाओ, लेकिन यहाँ वातावरण को ऐसा नहीं बनाना है। ये आज का दिन तो कोई बात नहीं है, क्योंकि आज थके हुए आए ना, आज तो सुबह से कल से आए हैं थके हुए, तो आज के दिन के बारे में नहीं सोचना, कल से ध्यान रखना। और दूसरी बात हम आपको बताएं, साकार बाबा क्या करते थे, जब हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे, क्योंकि हम भी काफी टाइम बाबा के पास रही हैं, तो जब हिस्ट्री हॉल में मुरली चलाते थे तो मुरली चलाते चलाते बाबा खड़े हो जाते थे, खड़े होकर के बाबा दृष्टि देते थे और दृष्टि सारे हॉल में चक्कर लगाते थे। जैसे बाबा ने दृष्टि दिया, सब इतने फरिश्ते बन करके बैठ जाते थे। तो अभी इस समय भट्टी में आपके पास कौन आएंगे, साकार बाबा भी आएंगे, अव्यक्त बाबा भी आएंगे। ये नहीं कहना कि बाबा आए इधर देखा उधर देखा, तो बाबा जो वरदान देने वाले पीछे वाले को दे देंगे, ध्यान रखना। वह इसलिए बाबा आपके पास आएंगे। कई बार बच्चे कहते हैं ना बाबा को, कहते बाबा हमने तो आपको देखा नहीं। अरे क्या नहीं देखा है, देखा ना बाबा तो सामने, बाबा आपके पास आते हैं। बाबा कहते मैं इंतजार कर रहा हूँ बच्चों के, शिव बाबा ब्रह्मा बाबा को पूछते हैं कब तुम्हारे बच्चे तैयार होंगे, ब्रह्मा बाबा कहते हैं मेरे बच्चे तैयार हो रहे हैं ना। और एक बार और बात सुनाती हूँ, एक बार किसी ने बाबा को कहा बाबा कब चलेंगे, जल्दी करें ना। बाबा ने कहा क्या चाहते तो मैं चला जाऊं, अरे जितना टाइम है मौज करो, सारे क्लब के अंदर यही टाइम है, कैसा भी शरीर है कैसा भी है, लेकिन बाबा के साथ का अनुभव तो केवल इस समय कर सकते हैं। तो इसलिए बाबा हमारे साथ है, दादियां हमारे साथ हैं, सब हमारे साथ हैं, कोई हमसे जुदा नहीं है, हम सब साथ चलेंगे और साथ ही रहेंगे, ठीक है ना। तो अभी आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, स्वागत के साथ साथ आप सबको बाबा के घर से खुशी की और स्वागत की मुख मीठा कराया जाएगा। बाबा के टाइम पर जब बच्चे आते थे बाबा क्या कहते थे, आओ मेरे, कौन से बच्चे बाबा कहते थे पर हैं, क्या कहते थे हैं, एक एक बोलो, सारे इकट्ठे नहीं, एक बोल, कलप पहले बोलो, और टोल पुट है, सिक्की लदे नहीं। अच्छा देखो, ठीक बोला, टोल पुट, टोल पुट समझते ना, टोली है स्वीट को कहते सिंधी में, और जैसे ना पंजाब में या दिल्ली में कहेंगे आओ आओ तुम्हारे को चीजी खिलाएं, चीजी खिलाएं, ऐसे बोलते हैं ना, आओ तो बच्चों को कहते इधर आओ तुम्हारे को ये खिलाएंगे, तो बाबा कहते आओ मेरे मीठे बच्चे, लाडले बच्चे, बाबा तुम बच्चों को बहुत बड़ा स्वीट बनाते हैं और स्वीट खिलाएंगे, स्वीट बनना है और स्वीट राजधानी में जाना है। तो दादी के पास भी कई बार ग्रुप आते थे ना, दादी आंगन में खड़ी होती थी तो दादी मिलती थी, फिर कहते तैयार होकर के आते थे, कहते दादी से मिलना, अरे अभी तो दादी से मिले, कहते टोली कहाँ खाई है, टोली क्या है, टोली हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो इसलिए आप सबको प्यारे बाबा की तरफ से, बाबा बहुत प्यार से आप सबका स्वागत करते हुए आपको टोली देंगे, और साथ साथ आपको मालूम हो कि माउंट आबू इतना अच्छा है ना, सुबह के टाइम अमृत वेले योग के बाद मौसम बड़ा अच्छा होता है, उस समय हर एक सोचता है चलो हम वॉक कर ले, लेकिन आपको पता हो हम कहाँ रहते हैं, जंगल में रहते हैं। ये माउंट आबू किसका स्थान है, जंगल के रहने वालों का स्थान है, बाबा ने जंगल को मंगल बनाया है। तो सुबह अमृत वेले योग के बाद अकेले कोई भी नक्की लेक के पास ना आए, गर्मी का मौसम है तो उस समय क्या होता है, जंगल के जो रहने वाले हैं जानवर वो तो फ्री हैं, तो वो क्या घूमते हैं, पानी पीने के लिए आते हैं। तो फिर आपको देखेंगे कहेंगे ऐसे योगी हमको कहाँ मिलेंगे, तो खुश हो जाएंगे ना, तो आपके पास आ जाएंगे, कुछ करेंगे नहीं तो आपको डरा देंगे, तो योगी कहेंगे, इसलिए कभी कभी, कभी होता नहीं है, इसलिए अकेले घूमने नहीं जाओ, योग के बाद अकेले नहीं जाओ, क्लास के बाद जाओ, जब थोड़ी रोशनी है 6 बजे 2-4 ग्रुप में जाओ, वो कुछ कहते नहीं हैं लेकिन वो क्रॉस करते आते नहीं, कभी कभी अचानक हो जाता है, कभी वो क्रॉस करते क्योंकि उनके भी बच्चे हैं, उनको खाने को ले चाहिए, जंगल से पत्ते तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, खाने के बाद पानी तो चाहिए ना, गर्मी है तो पानी के लिए वो नक्की लेक की तरफ जाते हैं पीने के लिए, क्योंकि इधर चारों तरफ पानी सूखा पड़ा है, नहीं तो नालों में पानी होता था, अभी सूख गया ना, तो घूमने उधर निकलते हैं। तो इसलिए उनको घूमना का, उनको तो फ्रीडम है, उनका घर है, आपको भी फ्रीडम है, लेकिन ध्यान रखना अकेले किसको नहीं जाना है, नहीं तो ऐसे योगी, दिल्ली के योगी मिल जाए तो कितने खुश हो जाएंगे, और तो क्या चाहिए उनको है, तो इस बात का भी ध्यान रखना है। अच्छा वैसे तो आप समझदार है, कोई ऐसी बात नहीं है, और आपके पास आने वाले भी नहीं है, लेकिन जानकारी देना आवश्यक होता है, कोई आने वाला नहीं है, कोई आपको दिखाई भी नहीं देगा, आप तो विश्व के मालिक हो, आप तो योगी हो, आपके पास कोई नहीं आने वाला है, लेकिन अकेले नहीं घूमना है, बाबा कहते ग्रुप में जाओ, लेकिन फिर भी बातें नहीं करनी है आपस में मिल करके। और दूसरी बात है, कभी कभी शांति स्तंभ पर योग करने बैठते ना, वहां पर सोचते हैं कि आज हम मुरली को भी पढ़ ले, सारे मोबाइल खोल के बैठ जाते हैं, मोबाइल के अंदर मुरली पढ़ रहे हैं, अरे बाबा वरदान दे रहे हैं, मुरली पढ़ रहे हैं, तो ये नहीं करने का, ना बाबा के कमरे में ना शांति स्तंभ पर, कहीं पर भी मोबाइल खोल करके नहीं बैठो, जो बाबा सुना रहे हैं वही सुनने का। अच्छा ओम शांति, और अभी आप सबको मुख मीठा कराया जाएगा, टोली दी जाएगी, पहले हम भाइयों को बुलाएंगे, भाई यहाँ से आएंगे, सारे नहीं उठेंगे, थोड़े थोड़े बुलाएंगे, फिर टोली लेकर के यहाँ से वापस जाएंगे भोजन करने के लिए, फिर बहनें भी कोई नहीं उठेगा, जब तक हम बहनों को नहीं कहें तब तक बहनें कोई नहीं उठेंगे, थोड़ी थोड़ी बहनों को उठाया जाएगा। अच्छा ओम शांति, अभी एक मिनट बाबा की याद में, हाथ लंबा करेंगे टोली लेते समय, ये बात का ध्यान रखना।
मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है,
मेरे भाग्य का सितारा झिलमिला रहा है,
सितारा।